ओम शांति। सबसे बड़ी कला मन को प्रभु में लगाना। इस दुनिया में एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन सभी कलाओं में से श्रेष्ठ कला है मन को प्रभु में लगाना। आप कहेंगे कैसे? इस दुनिया में मन को सबसे शक्तिशाली कहते हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो ऐसे शक्तिशाली मन को सर्वशक्तिवान परमात्मा पर टिकाना, ये सबसे बड़ी कला कहलाती है। दूसरी बात, यही एक कला ऐसी है जो हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराती है। इसी कला से हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि ब्राह्मण जीवन में ये श्रेष्ठ कला मुझ आत्मा के पास जरूर हो। तो मन को प्रभु में लगाना, इसी को मन मना भाव के मंत्र का जाप करना कहते हैं। इस महामंत्र के जाप करने से हमें विशेष 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ, आत्मा में शक्तियां जमा होती हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती हैं। दूसरा लाभ, जो हमारे सिर पर 63 जन्मों का पाप का बोझ है, उस बोझ को हम उतारते जाते हैं। और तीसरी बात, जो परमात्मा प्यार के सागर हैं, उस प्यार के सागर से प्यार की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते हैं। कहते हैं जिसको प्यार के सागर का प्यार मिलता है, उनको आत्माओं का प्यार पाने की आस या प्यास नहीं होती है। दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो सीधा फैक्ट्रियां खोल देते हैं, सबसे जास्ती प्रॉफिट खुद लेते हैं, कमाते हैं और दूसरों को थोड़ा सा मिलता है। हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे बैठे हैं यहां, और उस बाप ने हम सभी को बहुत अच्छी फैक्ट्री खोल के दी है, और उस फैक्ट्री का इनकम 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई का है। दुनिया में किसी भी फैक्ट्री का इतना इनकम नहीं है। वो फैक्ट्री है याद की। उस फैक्ट्री का ओनर है आत्मा, मैनेजर है बुद्धि, और उसमें कर्म करने वाला कर्मचारी है मन। जब मन रूपी कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है, इनकम हमारा होता है। और इस फैक्ट्री का रिजल्ट सैटिस्फैक्ट्री होता है। दुनिया में जिस फैक्ट्री का इनकम बहुत होता है, मालिक लालच में आकर कहता है 24 घंटे भी कम लग रहे हैं। भगवान ने ये जो दिन बनाया है 24 घंटे का, ये भी मुझे कम लग रहा है, और बड़ा होता तो और अच्छा होता। तो हमें भी इस फैक्ट्री को बहुत अच्छी तरह से चलाते जाना है। हर पल को सफल करते जाना है और अनेक पद्मों की कमाई करते जाना है। इस दुनिया में एक से एक बढ़कर बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान आत्माएं कौन हैं? योगी आत्माएं इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं। उनके पास दो कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला, वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं, माया दुश्मन के राज में रहकर माया के वार से सदा अपने मन बुद्धि को सेफ रखते हैं, दुश्मन से वो धोखा कभी नहीं खाते हैं, ये चतुराई उनके पास होती है। दूसरी बात, तीनों लोगों में सबसे जास्ती कमाई करने का ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। उसी ठिकाने पर वो अपने मन बुद्धि को लगाते हैं और बहुत कमाई करने में समय सफल करते हैं, ये अकल उनके पास होती है। अविनाशी कमाई, विनाशी नहीं, अविनाशी कमाई जो साथ में चलती है, वो कमाने में ही वो अपना समय सफल करते रहते हैं। और जब कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलता है, पड़ोसी पड़ोसी कहते इस फैक्ट्री को हमने चलने नहीं देना है, कुछ ना कुछ विघ्न जरूर डालना है। तो माया भी सोचती है इसकी फैक्ट्री को मुझे चलने नहीं देना है, कोई ना कोई विघ्न जरूर लाना है। तो मन को भटकाने वाली बातें कौन सी हैं, भ्रमित करने वाली बातें कौन सी हैं, उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहली बात, मन को भटकाने वाली, मन अपने देह से और दूसरों के देह से बहुत संकल्प करता रहता है। हमें अपने देह से बहुत लगाव होता है, 24 घंटे कोई साथ रहता है आपके, कोई नहीं रह सकता है। कितना भी नजदीक का संबंधी हो, दो चार घंटा रहेगा, लेकिन ये शरीर 24 घंटे साथ में रहता है। इसलिए इस देह से हमारा बहुत लगाव होता है, मन को वो देह खींचता रहता है। और द्वापर युग से हमारा एक कड़ा संस्कार बन चुका है देहधारियों के प्रति आकर्षण होने का। जब भी हम बाहर जाते हैं, देहधारियों के तरफ हमारी बुद्धि आकर्षित होती रहती है। तो इसलिए इन दोनों बातों से मन को हटाना है, इसके लिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास हमें करना है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, देहधारियों के संपर्क में आते हैं, सबके भ्रुकुटी में आत्मा बिंदु देखने का अभ्यास को बढ़ाते जाना है। मैं आत्मा और जो भी सामने आती है वो भी आत्मा। तो आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल ही नहीं सकते। मन बाबा की याद में टिका रहेगा। दूसरा विघ्न है देह की दुनिया और देह के पदार्थ अपने मन बुद्धि को आकर्षित करते हैं। इस देह की दुनिया में हम 5000 वर्षों से रह रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने इस रंग मंच पर पाठ बजाया। अभी हम रिटर्न जर्नी पर जा रहे हैं। तो ये दुनिया गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के चमचमाते हुए उसके दरवाजे हो, खिड़कियां हो, आखिर तो गेस्ट हाउस ही है। जो चैन की नींद आपको अपने घर में आएगी वो गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। तो इस पुरानी दुनिया को हमें गेस्ट हाउस समझना है। तो धीरे धीरे हमारा मन यहां से हटता जाएगा। हम रिटर्न जर्नी पर है, यहां से हमें उपराम होना है। ऊपर वाले राम को याद करने के लिए उपराम होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर हमारा उठता रहे और वस्तु और वैभव कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन ये सारे अल्पकालीन हैं, विनाशी हैं। बाबा ने कहा है यहां से कोई भी चीज सतयुग में जाने वाली नहीं है। तो ऐसे विनाशी चीजों से क्या हम मोह लगाए, क्या मन उसमें लगाएं? तो लोगों को हम समझाते हैं, मुरली सुनते हैं, घर मुझे वापस जाना है, लेकिन जिस समय हम दिल से स्वीकार करते हैं मुझे यहां से जाना है, तो स्वतः ही मन यहां से उपराम होने लगता है। मन मनाभव का मंत्र का जाप करने लगता है। तीसरी बात, हमारा देहधारियों के तरफ बुद्धि योग भागता जाता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा कई जन्मों के अनेक आत्माओं के साथ हिसाब का किताब है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर यहां हम बैठे हैं। अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट हैं। न चाहते हुए हमारा देहधारियों के तरफ आकर्षण होता है। कोई संबंध हमें खींचता है। इसलिए जो भी संबंध हमें खींचता है उस संबंध की अनुभूति हमें बाबा के साथ करना है। क्योंकि बाबा का गायन क्या है? उनको पारसनाथ कहते हैं, पा रस नाथ। वो एक ही ऐसा नाथ है जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। उन्हों में ही वो क्षमता है सर्व संबंधों की अनुभूति आत्माओं को कराने की। इसलिए कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे अपने तरफ खींचे नहीं, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को न बांधे। इसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमें करनी है, बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर मन बुद्धि को बिठाना है, क्योंकि हमने मन और बुद्धि को द्वापर युग से बहुत भटकाया। मन बुद्धि थक चुकी है, इसलिए एक ठिकाने पर उसको लगाना है और अच्छी तरह से हमें कमाई करते जाना है। इस संसार में रहते हुए बाबा को अपना संसार अनुभव करते जाना है। अभी ये जो हमारा मन है, ये हमेशा मनमना भव का मंत्र का जाप करता रहे, उसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो कर्मचारियों पर बहुत ध्यान रखता है, ये अच्छी तरह से कर्म करते रहें और फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चलती रहे। तो मन को सारे दिन भर में हमें हल्का रखना है। मन पर थोड़ा सा भी अगर हम बोझ रखते हैं तो मन काम करना छोड़ देता है। मन मनाभव का जाप करना छोड़ देता है। इसलिए मन को सदा हल्का रखने के लिए पहली युक्ति है, कर्म करते समय हमें स्वमान में स्थित होकर कर्म करना है। जब हम स्वमान में स्थित होकर कर्म करते हैं तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है, और आत्मा पर जब ईश्वरीय नशे का प्रभाव होता है तो अन्य बातों का प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर मुख्य तीन बातों का प्रभाव मन पर होने की संभावना होती है। जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, जिस माहौल में वातावरण में हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, और जो साथी हमारे होते हैं उनकी स्थिति का भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ सकता है। और इन तीनों बातों के प्रभाव से अगर हमें निर्लिप्त रहना है तो ईश्वरीय नशे का प्रभाव आत्मा पर सदा रहे। उसके लिए स्वमानधारी होकर हमें कर्म क्षेत्र पर आना है। दूसरी बात, मन को हल्का रखने के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, बाबा के कंधे पर हमें रखना है और खुद को एकदम लाइट अनुभव करना है। क्योंकि बाबा द्वापर युग से देख रहे थे हम बहुत बड़ा बोझ अपने सिर पर लेकर कर्म करते थे, तो बाबा सोचते थे कि जब मैं धरती पर जाऊंगा अपने बच्चों को सदा लाइट हल्का रखूंगा। तो बाबा कहते हैं मुझे बोझ दो। हम बोझ तो बाबा को दे देते हैं, लेकिन निश्चय में कमी होने के कारण वो वापस ले लेते हैं। पता नहीं ये काम ठीक से होगा या नहीं, पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, और उसके कारण मन बोझिल होता है और वो मन बाबा में नहीं लगता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तरह एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह हमें रहना है। कोई भी चिंता या बोझ हमें नहीं करना है। आपको एक बात याद होगी, बेगरी पार्ट में एक दिन मुरली में शिव बाबा के गए कि आज दोपहर को भोजन में सभी बच्चों को हलवा पूरी बाबा खिलाएंगे। मम्मा भागी भागी आई बाबा के पास, बाबा भंडारी में पैसे नहीं, कैसे खिलाएंगे इतने लोगों को हलवा पूरी। बाबा बैठे हैं मस्ती में, बच्ची वो बोल कर गया है, मैंने नहीं कहा है, वो जाने उसका काम जाने, मैं चिंता क्यों करूं। 10 बज गए, कुछ नहीं। थोड़े समय के बाद पोस्टमैन आया, चेक उसने दिया, बाबा ने विश्व किशोर भाऊ को चेक दिया, बैंक से पैसा निकाला, बाजार से सामान लाया और सभी के थाली में हलवा पूरी सब ने खाया। तो ऐसा हमें निश्चिंत रहना है। अकेले काम करते हैं लेकिन बाबा को मददगार बनाते हैं तो एक से दो हो गए, डबल इंजन लग गया, तो उसमें सफलता तो मिलेगी ही हमें। तो मन को सदा हमें हल्का रखना है। तीसरी युक्ति, कर्म क्षेत्र में हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। फरिश्ता स्थिति अर्थात लाइट का शरीर अनुभव करना। स्थूल शरीर समझेंगे तो थकावट आ सकती है क्योंकि ये शरीर मशीनरी है, लेकिन लाइट का शरीर समझेंगे तो लाइट कभी थकती नहीं है। कितना भी हम कर्म करते हैं तो भी अथक सेवाधारी बनकर कर्म करते जाते हैं। इसलिए कर्म योगी फरिश्ता हूं ऐसा समझकर हमें कर्म क्षेत्र पर रहना है। और चौथी बात, सदा लाइट रखने के लिए स्वयं को नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। हम यहां बैठे हैं इस हॉल में, पहली बार बैठे हैं, ऐसे अनगिनत बार यहां आए हैं, बैठे हैं, इसी तरह से बैठे हैं और बैठते ही रहेंगे। नथिंग न्यू, कोई नई बात तो है ही नहीं। नई बात हो तो टेंशन हो, बोझ हो, लेकिन केवल ये रिपीटेशन है। ओनली एंड ओनली दिस इज अ रिपीटेशन, नथिंग न्यू। बाबा ने कहा था जो इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे उनके जीवन में नथिंग न्यू का पाठ बहुत नेचुरल होगा। जो भी हो रहा है केवल और केवल रिपीटेशन हो रहा है। प्रकाशमणि दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक रहा मधुबन में। मैं दादी जी को देखता था और दादी के जीवन से मैंने कई बातें सीखी। तो एक बार मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था, 95 की बात होगी। दादी जी के पास गया और दादी जी से प्रश्न पूछा कि दादी जी मैं आपको देखता हूं, आप इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, इतने 6-7 हजार सेवा केंद्र है उनका संचालन कर रही है, कई ऊंची नीची बातें भी आती हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं देखा, बोझ का चिन्ह नहीं देखा, हमेशा छोटे बच्चे की तरह खुशी में झूमती रहती है, लाइट रहती है, इसका सीक्रेट मुझे बताओ, डिप्लोमेटिक रीति से नहीं सीधा बताओ। तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, पहली बात, मैं स्वयं को हमेशा निमित्त समझती हूं, करण करावनहार वो है, मैं केवल कठपुतली हूं, वो मेरे द्वारा करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूं। दूसरी बात, सदा मेरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में और दूसरे कंधे पर शिव बाबा, दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ मेरे पास रहते हैं, इसलिए कोई भी विघ्न आता है, कोई भी बात आती है, उनके सहयोग से चुटकी में पार हो जाती है। दादी जी का एक ही स्लोगन था, समस्या कोई भी आती थी, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करना माना भगवान को साथी बनाना, भगवान जिस कार्य में साथी होगा वो कार्य सफल नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, हुआ पड़ा है। पांचवी बात, मन बाबा में सदा लगा रहे उसके लिए पांचवी बात है, ब्रह्मा बाबा रोज रात्रि को मन बुद्धि संस्कार तीनों का दरबार लगाते थे, मन को पूछते थे तुम सहयोग दिया बुद्धि को, संस्कार के पूछते थे सभी ने मिलकर काम किया या कोई किसी ने सहयोग दिया नहीं है, ऐसे कुछ बात है, अगर नहीं है तो मन को समझाते थे, बुद्धि को समझाते थे, फिर दूसरे दिन और चेक करते थे। तो ऐसे दरबार लगाते थे, उसके कारण तीनों में बहुत अच्छा परिवर्तन आता था और तीनों अच्छी तरह से कार्यरत रहते थे। तो हमें तीनों अच्छी तरह से मिलकर जुलकर काम करते रहें, हार्मोनी बनकर, वो हमें देखना है। और विशेष चार्ट जरूर हमें रखना है, जो बहुत होशियार बिजनेसमैन होते हैं वो तीन बातें हर रोज चेक करते हैं, कितना मेरा अर्निंग है, कितना मेरा स्पेंडिंग है और कितना मेरा सेविंग है, ये तीन बातों की चेकिंग हर रोज करता है अच्छा बिजनेसमैन। तो हमें भी चार्ट रखना है, चार्ट से पता चलता है सारे दिन भर में मेरी अविनाशी कमाई कितनी हो चुकी है। मैं 73 में पहली बार बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहा था, मधुबन में, नागपुर से हमारी पार्टी आई थी, हिस्ट्री हॉल में बाबा यहां बैठे हैं, मैं एकदम सामने बैठा हूं नीचे दर्द। तो बाबा ने दृष्टि दिया और मेरे प्रति महावाक्य उच्चारण किया। अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। अब मैं एक साल का बच्चा नया, अब याद का चार्ट क्या होता है कुछ पता ही नहीं, पूछता था टीचर को, टीचर भी नहीं बता रही। लेकिन जब मैं 76 में मधुबन में आया और दादियों के क्लासेस और बाबा की मुरलियों सुनकर चार्ट अपना बनाया हर घंटे का, और उसको मैंने मेंटेन करना शुरू किया, तो एक साल के बाद बाबा से मैं हिस्ट्री हॉल में पर्सनली मिल रहा था, तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका याद का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। वो मेरे ब्राह्मण जीवन की शुरुआत थी। तो चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। चार्ट्स मेक्स यू स्मार्ट। क्यों? क्योंकि चार्ट रखने से मन और बुद्धि की चेकिंग पावर बढ़ती है, उन पर हमारा अटेंशन बढ़ता है। मन और बुद्धि को डिसिप्लिन में रखने की कला हमारी बढ़ती है। बिजी कैसे रखें, अनुशासन में कैसे रखें, ये कला चार्ट रखने से बढ़ती है। और उसके कारण बहुत अच्छी हमारी कमाई बढ़ती जाती है। इसलिए जितना हो सके चार्ट लिखने पर हमें जरूर ध्यान देना है। अभी मन बाबा के पास परम धाम में सदा बैठा रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? अगर आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं, आपके जीवन में सबसे खुशनुमा में पल कौन से हैं, या दूसरा प्रश्न पूछते हैं, आपके जीवन रूपी किताब का कौन सा अच्छा पेज है, तो जवाब आप देंगे, जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ भगवान के साथ अनुभव करती हूं, वो सबसे खुशनुमा पल मेरे जीवन के हैं। डायमंड मोमेंट्स मेरे जीवन के वो है, और ये मेरी पूंजी है। उस पूंजी को मुझे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। लेकिन बाबा के पास मन को बिठाना है लंबे समय तक, तो तीन बातों पर हमें ध्यान देना है। पहली बात, बाबा के पास बैठते समय कभी भी हमें हिचकना नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं बाबा तो पवित्रता का सागर है, मुझ आत्मा पर अपवित्रता के काले धब्बे हैं, पता नहीं मैं बाबा के पास समीप बैठ सकता हूं या नहीं, थोड़ा हेजिटेशन होता है। लेकिन हमें बड़े मस्ती से, बड़े थाट से बिल्कुल नजदीक बैठना है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है, बाबा ने हम सजनियों को अपना बनाया है, सजनियां कैसी भी हो उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। दूसरी बात, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं, बाप के कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठांड से हम बाबा के बाजू में बैठना है। दूसरी बात, बाबा से हमें कभी भी मांगना नहीं है। बच्चे माना अधिकारी, भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। बच्चे हम बने हैं, बाबा कहते हैं मेरे पास इतने सारे खजाने हैं, ये सारे आपके लिए हैं। इसलिए परम धाम में अधिकारी रूप में बैठना है। बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। उस अधिकारी से हमें बैठना है और बाबा से खूब शक्तियां लेते रहना है। कभी भी साधारण नहीं समझना है। और तीसरी बात, बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो मन की बैठक शक्तिशाली हो। जो बल्ब जितना पावरफुल होता है, जितना ज्यादा वोल्टेज वाला होता है, उतना वो पावर हाउस से करंट खींचता है। तो शिव बाबा जो सर्व शक्तियों के पावर हाउस हैं, तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो उनसे बहुत शक्तियां हम स्वतः ही ग्रहण करते जाएंगे और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। तो ऐसी तीन बातों पर हमें जरूर ध्यान देना है। और मन मना भव का मंत्र का जाप करना है। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन को बाबा की याद में मनाना, लगाना, रिझाना, रमण करना। तो मन को बाबा की याद में हमें लगाते जाना है। अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर अभ्यास करने जा रहे हैं, मन को प्रभु में लगाने के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, क्योंकि भगवान के साथ मधुर मिलन मनाने के लिए मन और बुद्धि नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर होना जरूरी है। तो चले हम सभी बाबा के पास। ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा रूपी राजा भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का राजा हूं। राजा ही का नशा मुझसे अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा राजा पवित्रता का ताजधारी हूं। बहुत सुंदर,
दिव्य और भव्य। पवित्रता का ताज मैंने धारण किया है, परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा राजा, शरीर रूपी महल से न्यारा होकर दिव्य बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार, अद्भुत शक्तियों की अनुभूति मुझे हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं।
के नहनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिखिलते बच्चे हैं, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल पांच हजार वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। चुप चाहो, जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। सचमुच मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया। चार और सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य श्री पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सुमी शिव पिता से अनंत शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं।
वारे में, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से बुद्धि बल द्वारा पुनः वापिस वाया सूक्ष्म होता सकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं, और पुनः इस सकारी शरीर रूपी महल में अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मस शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है, और शक्तियों की किरणें मेरे द्वारा चारों ओर प्रवाहित हो रही है।